प्रवचन 7 आग जलाने के लिए। सजादा ने कहा, आपने नैतिक शिक्षा पद ग्रहण कर लिए हैं, अब उनका पालन कीजिए। जब आपका शील का अर्थात नैतिकता का पालन परिपूर्ण होगा, केवल तभी आप जागृति की अपनी आकांक्षाओं को पूरी कर सकते हैं। शील में पारंगत होकर आपको विभिन्न प्रकार के अन्य पुण्य कार्य करने होंगे और ये आपको शिखर तक तथा आपकी आकांक्षाओं की पूर्ति तक ले जा सकते हैं। बुद्ध की शिक्षा त्रिपिटक में निहित है। इन्हें बुद्ध ने इसलिए नहीं दिया कि इनका केवल प्रचार और अध्ययन किया जा सके। आप अच्छे लोग हैं, आपको अटूट प्रयास के साथ दुख से मुक्ति के लिए शिक्षा प्राप्त होते ही उनका अभ्यास करना होगा। शिक्षणों के विषय में भ्रमित मत होइए। हमें अनेक तकनीक को जानने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक ही पर्याप्त है, किंतु हमें उसका स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए। ऐसा मुझे लगता है कि यदि हम प्रबल प्रयास के साथ एक तकनीक को स्थापित करते हैं तथा सभी संदेहों को दूर कर लेते हैं, तो बिना किसी और से पूछे ही हमें उत्तर मिल जाएगा। किसी एक तकनीक को चुन लीजिए और उसका लगातार अभ्यास कीजिए। यदि आप उस छोटे से स्थान पर ध्यान केंद्रित करें जहां जब आप श्वास लेते और छोड़ते हैं तो वायु स्पर्श करती है, तब कोई लोभ, घृणा या भ्रम नहीं होगा तथा जब ये तीनों अनुपस्थित होते हैं तो आप तत्काल दुख से मुक्त होते हैं। अतः एक अल्प क्षण के लिए आपका मन शुद्ध होता है। अब यदि आपका अंतिम चित्त क्षण उसी समय उदित हुआ तथा आप मृत्यु को प्राप्त हुए, तो क्या कोई चिंता करने की अथवा भय की बात हो सकती है? हम यहाँ बता दें कि बुद्ध ने अभिधम्म में यह स्पष्ट किया है कि पुनर्जन्म की चेतना के लिए अंतिम चित्त क्षण उत्तरदायी होता है। यदि इस जीवन के अंतिम क्षण में चित्त की अच्छी मनोदशा होती है तो उससे उत्पन्न प्राणी आनंदमय प्राणी होता है। उदाहरण के लिए, यदि अंतिम चित्त क्षण भय, लोभ या घृणा युक्त हो तो परिणाम स्वरूप प्राणी अस्तित्व के अपाय लोकों में पुनर्जन्म लेगा, अर्थात दुर्गति प्राप्त करेगा। मृत्यु से पूर्व मन के अंतिम क्षण तथा पुनर्जन्म के प्रथम चित्त क्षण के बीच समय का कोई अंतर नहीं होता। भिक्षु अनुरुद्ध द्वारा विरचित अभिधम्म मत्थ संग्रह का अभिधम्म प्रकाशनी व्याख्या के साथ हिंदी में अनुवाद भिक्षु डॉक्टर रेवत धम्म तथा रामशंकर त्रिपाठी द्वारा वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय से 1967 में प्रकाशित है। इसमें इन प्रक्रियाओं का विस्तार पूर्वक विवरण है। अंग्रेजी में पाली टेक्स्ट सोसाइटी द्वारा प्रकाशित कंपेंडियम ऑफ फिलॉसफी के इंडेक्स टू पाली वर्ड्स में पटिसंधि, च्युति एवं चित्त के संदर्भ में विवरण देखा जा सकता है। तो सयादा ने आगे बताया कि इस अभ्यास से प्राप्त लाभ का प्रभाव आपको मात्र अल्प समय तक अथवा एक जीवन पर्यंत ही नहीं मिलेगा। पवित्रता का यह छोटा सा क्षण आपके शेष जन्म मृत्यु चक्र के लिए लाभदायक होगा। तथा आपको यह उपलब्धि क्यों प्राप्त हो सकती है? क्योंकि यह उचित कालखंड है। आप अस्तित्व के उचित लोक में हैं तथा आप उचित प्रयास कर रहे हैं। बुद्ध के शिष्यों ने उनसे यह साधना ग्रहण की तथा दृढ़ता के साथ अटूट परिश्रम किया। इसीलिए उन्होंने वह जागृति प्राप्त की जिसकी उन्होंने आकांक्षा की थी। उन्होंने कैसे परिश्रम किया? ठीक उसी प्रकार जैसे कि प्राचीन काल में लोग आग की लकड़ी से आग जलाना चाहते थे। वे लकड़ी के दो टुकड़ों को आपस में रगड़ते थे तथा उष्णता उत्पन्न होती थी। अंततः लकड़ी में चमक आने लगती थी और तब वे आग जला सकते थे। तो यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार आग सुलगाना चाहता है और लकड़ी के दोनों टुकड़ों को आपस में रगड़ता है, तो क्या वह गिनता है एक रगड़न, दो रगड़न, तीन रगड़न? नहीं बनते, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो उसे यह कैसे करना होगा? उसे तब तक लगातार रगड़ते रहना पड़ेगा जब तक कि आग की लपट न आ जाए। हाँ, उन दिनों जब वे आग सुलगाना चाहते थे तो उसके लिए यही एक उपाय था। उन्हें सुदृढ़ संकल्प के साथ अविरल रगड़ना पड़ता था। अच्छा, यदि कोई इस प्रकार लकड़ी के दोनों टुकड़ों को आपस में रगड़े तो आग सुलगाने के लिए कितना समय लगेगा? पर्याप्त उष्णता होने पर आग सुलग जाएगी बंते। क्या उसमें लंबा समय लगेगा? बहुत लंबा नहीं बनते। नहीं, यदि वह व्यक्ति दृढ़ संकल्प के साथ परिश्रम करता है तो लंबा समय नहीं लगता। ठीक ऐसा ही यहाँ इस साधना के साथ है। आप आग चाहते हैं, आप जानते हैं कि यदि आप लकड़ी के इन दो टुकड़ों को आपस में रगड़ें तो आपको यह मिल सकती है। अब यदि आप गिनते हैं एक रगड़न, दो रगड़न, तो यह थोड़ी गर्म हो जाएगी और फिर आप कुछ देर विश्राम करते हैं तो क्या आप आग सुलगा पाएंगे? नहीं बनते। ठीक है, तो आप पुनः प्रारंभ करते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, और फिर से गर्मी उत्पन्न होती है। तब फिर आप लेट जाते हैं और थोड़ा विश्राम करते हैं तो क्या आप आग सुलगा पाएंगे? नहीं बनते। और यदि आप पूरे एक महीने तक ऐसा करते रहें तो हमें आग नहीं मिलेगी बनते। और यदि आप पूरे एक वर्ष तक जारी रखें तो वह केवल गर्म हो जाएगी बनते, किंतु आग नहीं होगी। अच्छा, यदि आप इस प्रकार 100 वर्ष तक काम करते रहें तो क्या होगा? वह केवल गर्म होगी भंते। तो क्या इसका अर्थ है कि लकड़ी के इन दो टुकड़ों में कोई अग्नि नहीं है? भंते, उनमें अग्नि है किंतु निष्ठा एवं प्रयास पर्याप्त नहीं है। ठीक ऐसा ही हमारी साधना के साथ है। आपको अवकाश लिए बिना आग सुलगाने वाले की तरह काम करना है। शीघ्र ही वह गर्म हो जाएगा तथा तत्पश्चात कुछ समय के बाद आग सुलग जाएगी। उसके बाद ही जिस तरह से आप चाहते हैं वैसे ही उस आग का उपयोग करने में आप सक्षम हो जाएंगे। आप सभी को जागृति के लिए, अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए प्रयास करना चाहिए। आपको बुद्ध की शिक्षा प्राप्त है। अब आपको ऐसी साधना करनी है जिससे आपके प्रयास प्राचीन काल के उन समझदार व्यक्तियों के प्रयासों के समान हों जिन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। दुख से बाहर निकलने का मार्ग केवल बुद्ध की शिक्षा में है और आप उनका अभ्यास केवल तभी कर सकते हैं जब कोई बुद्ध उदित हों और जब तक उनकी शिक्षा उपलब्ध रहें। जब किसी बुद्ध की शिक्षा उपलब्ध नहीं होती तो आप निर्वाण की अपनी मनोकामना को पूरा नहीं कर सकते। जब संसार में बुद्ध उदय होते हैं तो उचित आचरण पाली में चरण तथा विद्या पाली में विद्या जो दुख से बाहर ले जाती हैं का प्रतिपादन होता है। यदि आप इस अवसर का सदुपयोग करते हैं तथा उनको व्यवहार में लाते हैं तो आप उत्कृष्ट हो जाएंगे। जब किसी बुद्ध की शिक्षा नहीं रहती तब भी उचित आचरण का अभ्यास किया जा सकता है, परंतु अंतर्दृष्टि या प्रज्ञा नहीं उपलब्ध हो पाती। समुचित आचरण का सही अर्थ क्या होता है? अब जबकि किसी बुद्ध की शिक्षा उपलब्ध है, आप सभी लोग अथक रूप से भिक्षुओं को भोजन, वस्त्र, आवास और औषधि, ये चारों प्रत्यय अर्थात आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते हैं। जब आप देते हैं तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार सर्वोत्तम ही प्रदान करते हैं, परंतु तब भी आप संतुष्ट नहीं होते। आप और भी अधिक से अधिक करना चाहते हैं। यह अच्छा आचरण है। सभी दुखों से बचने में सक्षम होने हेतु बुद्ध की शिक्षा का अभ्यास करने के लिए हमें अविरल निरंतर रूप से ध्यान की विषय वस्तु के प्रति जागरूक रहना चाहिए। यदि हम इस प्रकार से जागरूक रहते हैं तो हम विद्या का अभ्यास करते हैं। इन दोनों का एक साथ अभ्यास करते हुए तथा प्रयास में पारंगत होकर प्राचीन काल के समझदार लोगों ने जागरण प्राप्त किया जिसकी उन्होंने आकांक्षा की थी। आप सोचते होंगे कि ठीक है, हम भिक्षुओं को भोजन, वस्त्र, आवास एवं औषधियाँ दान कर शिक्षा का पालन करते हैं तथा शिक्षा का स्वयं आत्मसात करने के लिए हमें अंतर्दृष्टि का अभ्यास करना होगा। यदि दान की तैयारी करने के पश्चात कुछ समय शेष हो पाएगा तो हम वह भी करेंगे। अब यदि आप इस प्रकार काम करते हैं तो क्या आप समुचित आचरण का या अंतर्दृष्टि का अभ्यास कर रहे होते हैं? भंते, यह तो समुचित आचरण है। जब आप अपने कर्तव्यों का पालन कर लेते हैं तथा तब अपने ध्यान को निरंतर एक ही विषय वस्तु पर केंद्रित किए रखते हैं तो आप कौन सा अभ्यास करते हैं? प्रज्ञा का। बनते तो समुचित आचरण का क्या हुआ? जब आप कर्मस्थान पर ध्यान केंद्रित रखते हैं क्या आप तब भी समुचित आचरण का अभ्यास कर रहे होते हैं? हाँ बनते, तब हम एक ही साथ समुचित आचरण और विद्या का अभ्यास कर रहे होते हैं। हाँ, आप दोनों का संयुक्त रूप से अभ्यास कर सकते हैं। पहले आप भोजन तैयार करते हैं और तब आप ध्यान लगाते हैं। इस प्रकार हमें समुचित आचरण एवं अंतर्दृष्टि दोनों साधनाओं में अपने आप को परिपूर्ण करना है। परंतु पहले आप समुचित आचरण का अभ्यास करते हैं और तत्पश्चात ही आप अंतर्दृष्टि का अभ्यास करते हैं। क्या यह संभव नहीं है कि बुद्ध की दोनों मुक्तिदायिनी शिक्षा का अभ्यास एक साथ किया जाए? क्या यह संभव नहीं कि भोजन की तैयारी करते समय या किसी विहार का निर्माण करते समय भी आश्वास व प्रश्वास से अवगत रहें? यह संभव है बंते? तो देखिए, बुद्ध के समझदार शिष्य इसी प्रकार अभ्यास करते थे। उनमें अच्छे परामर्श एवं निर्देशों को स्वीकार करने की क्षमता थी। क्या आपको लगता है कि उन्होंने सोचा होगा कि हमारे माता पिता, जो हमारी सर्वोच्च संपत्ति हैं तथा जिनके हम असीम कृतज्ञता के साथ ऋणी हैं, वृद्ध हो रहे हैं, हमें उनकी रात दिन सेवा करनी है, अतः हम ध्यान नहीं लगा सकते? बनते कुछ लोगों ने इस प्रकार सोचा होगा। क्या किसी के अपने माता पिता के प्रति कर्तव्यों को समुचित आचरण में सम्मिलित किया गया है, अथवा समझ अर्थात प्रज्ञा में? यह सही आचरण है बनते। जब आप अपने माता पिता की देखभाल करते हैं तो उस समय मन एवं पदार्थ का बोध बनाए रखना संभव नहीं है क्या? यह संभव है बनते। अब जबकि आप जानते हैं कि प्राचीन काल के समझदार लोगों ने समुचित आचरण एवं समुचित समझ का एक ही साथ अभ्यास किया था, तो क्या आप भी अभी अपने बच्चों तथा नाती पोतों की देखभाल करते हुए प्रज्ञा यानी समझ का अभ्यास करना असंभव समझते हैं? जब आप अपने सभी कर्तव्यों का पालन कर रहे होते हैं, तो क्या उसी समय अपने मन को मन एवं पदार्थ की जागरूकता में प्रशिक्षित नहीं कर सकते? आप जहां कहीं भी हों, आप जो कुछ भी कर रहे हों, आप समुचित आचरण एवं ध्यान का अभ्यास एक ही साथ कर सकते हैं। जब आपके बच्चे अच्छी तरह व्यवहार कर रहे हों, तो आप आश्वास एवं प्रश्वास से अवगत रह सकते हैं, तथा जब वे शरारती हो जाएं और उन्हें आपको सुधारना हो, तब भी आप अभ्यास कर सकते हैं। मुझे बताइए कि अपने बच्चों को सुधारना प्रशिक्षण का कौन सा भाग है? यह सही आचरण है भंते। तो यदि आप उनको अनुशासित करते समय जागरूकता का अभ्यास करते हैं, तो आप कौन सा अभ्यास कर रहे हैं? सूझ का भंते। जो भी हमें करना है उसे करते हुए यदि हम जागरूकता का अभ्यास करते रहे, तो क्या हम दुख भोगेंगे? क्या इसमें हमारा कुछ खर्च होता है? क्या यह हमारे काम में बाधा डालता है? नहीं बनते। यदि कोई जागरूकता के साथ कार्य करता है, तो वह कार्य और अधिक शीघ्रता से पूर्ण हो जाता है। यदि आप अपने आप को विचलित नहीं होने देते, तो आप और तेजी से काम करेंगे तथा आप और अधिक धन कमाएंगे। आपकी निर्वाण की मनोकामना भी और शीघ्रता से पूरी होगी। सभी प्राणी जो इस प्रकार अभ्यास करते हैं, वे अपनी मनोकामनाएं सिद्ध कर सकते हैं। एक भी ऐसा क्षण नहीं है जिसमें आपकी मनोकामना पूरी करना संभव न हो। यद्यपि इसके लिए समय अच्छा है, फिर भी जो बुद्ध की शिक्षा का अभ्यास नहीं करते, उन मनुष्यों, देवताओं तथा ब्रह्मलोक के प्राणियों के विषय में आपका क्या विचार है? क्या वे अपनी आकांक्षाएं पूरी कर सकते हैं? भंते, जो लोग प्रयास नहीं करते, वे अपनी आकांक्षाएं पूरी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनका पुनर्जन्म अस्तित्व के उचित लोक में नहीं हुआ है, अथवा इसलिए कि यह उचित समय नहीं है। नहीं बनते, परंतु बिना प्रयास के कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, या संभवतः उनमें पर्याप्त पारमी नहीं है। बनते, हो सकता है कि कुछ लोग शिक्षा को ठीक से समझ नहीं पाते, क्योंकि अतीत में उन्होंने पर्याप्त रूप से अपनी पारमी पूरी नहीं की है। किंतु यदि आप आगे प्रयास ही न करें तो क्या आप फिर भी दावा कर सकते हैं कि आपको पारमी के अभाव के कारण समझ में नहीं आता? जिन्होंने अतीत में पारमी संग्रह की है, वे जब शिक्षा को सुनते हैं तो निर्वाण के सोपानों को प्राप्त कर लेते हैं, किंतु भंते चूंकि हम में पारमी का अभाव है, हम धम्म को बारंबार सुनते हैं और हम जैसे के तैसे रह जाते हैं। प्राचीन काल के समझदार लोग प्यासे लोगों की तरह थे, चूंकि वे प्यासे थे अतः उन्होंने पानी ढूंढा, और जब उन्होंने उसे पाया तो क्या किया? क्या उन्होंने आकाश की ओर ऊपर देखा और कहा, ठीक है, हम अभी इस पानी को नहीं पीना चाहते? नहीं, वे ऐसे लोग थे जो वास्तव में प्यासे थे। और आपका क्या, आपके पास बुद्ध की शिक्षा है तो क्या आप तत्काल उन्हें पीते हैं? भंते, हम प्रतीक्षा एवं विलंब करते हैं। ऐसी स्थिति में यह सत्य नहीं है कि आप में कोई पारमी नहीं है। यदि आप नहीं पीते हैं तो आपकी प्यास नहीं बुझेगी। यदि आप अपने आप को जल पात्र के ठीक बगल में बैठा पाएं तो आप क्या करेंगे? चूंकि हम में पारमी की पर्याप्त मात्रा नहीं है, हम वहां मात्र बैठे रहते हैं। भंते, यदि आप जल से भरी किसी झील में पहुंचे तो आप क्या करेंगे? जब हम पानी में नीचे उतरते हैं तो हम अपनी गर्दन ऊपर उठाकर अपना चेहरा आकाश की ओर कर देते हैं। भंते, और यदि हमें डुबकी लगाना हो तो हम अपना मुंह कसकर बंद कर लेंगे। भंते, तो क्या आप अब भी मुझसे कह रहे हैं कि आप प्यासे हैं, किंतु आप में आवश्यक समझ नहीं है कि पीने में सक्षम हो सके? भंते, क्योंकि हम में आवश्यक संस्कार नहीं है, इसलिए हम पानी में अपना मुंह नहीं खोलते। यदि आप वास्तव में पीना चाहते तो क्या आप फिर भी अपना मुंह बंद रखते? वास्तव में यदि कोई सचमुच में पीना चाहता तो नहीं बंद रखता। भंते, तो आप कह रहे हैं, यद्यपि मैं पीना चाहता हूँ, मैं पीना नहीं चाहता। क्या आप अपने आप का ही विरोध कर रहे हैं? भंते, ऐसा लगता है मानो हमने न पीना चाहने का नाटक किया। तो मुझे बताइए, यदि आपको प्यास लगी है और उसे आप केवल सहन करते हैं तो क्या आप प्रसन्न होते हैं अथवा अप्रसन्न? अप्रसन्न। भंते, अतः यदि आप अप्रसन्न हैं तो क्या आप बिना पानी पिए जल पात्र के निकट बैठे रहेंगे? भंते, हम इस प्रकार के दुख को प्रसन्नता के रूप में देखते हैं। क्या बुद्ध ने कहा था कि यह प्यास आनंदमय है? नहीं भंते, उन्होंने कहा था यह दुख है। अब आप मुझे बताइए कि आपको क्या सत्य लगता है, जो बुद्ध ने कहा था अथवा जो आप सोचते हैं? हमारा इसे खुशी मानना गलत है। भंते, क्या आप सुखी होना चाहते हैं या दुखी? भंते, यद्यपि हम सुखी होना चाहते हैं, किंतु हम स्वयं के लिए दुख पैदा करते रहते हैं, तो श्रेयस्कर क्या है, बुद्ध की बात मानना या बुद्ध की बात न मानना? भंते, हम जानते हैं कि हमें बुद्ध वचन का पालन करना चाहिए, किंतु फिर भी हम स्वयं के लिए दुख बोना जारी रखते हैं। तब तो ऐसा लगता है कि आप यह जानते रहे हैं कि स्वयं के लिए क्या अच्छा है, किंतु आप बस आलसी हैं। भंते, क्योंकि हमारी पारमी कमजोर है, हमें अपने अज्ञान के कारण ग्रसित होना पड़ता है। अब यदि यहाँ पानी है और आप इससे अपनी प्यास नहीं बुझाते, तो क्या यह इस कारण से है कि आपने अपनी पारमी परिपूर्ण नहीं की है? पारमी के अभाव के कारण ही अज्ञान की शक्ति इतना अभिभूत करती है भंते, मुझे बताइए कि अधिक शक्तिशाली क्या है, विद्या अर्थात समझ या अविद्या अर्थात अज्ञान? भंते, मनुष्य के लिए समझ अधिक शक्तिशाली है। फिर तो आप जानते हैं कि जो समझ बुद्ध ने सिखाई है वह शक्तिशाली है। भंते, हम जानते हैं कि समझ एक अच्छी बात है, तो बस समझ के साथ अपना साहचर्य रखिए। भले ही आपको लगता हो कि अज्ञान की शक्ति प्रबल है या जो कुछ भी है, अब आपने मन एवं पदार्थ के बीच भेद करना सीख लिया है। जब आप मन एवं पदार्थ को जिस तरह बुद्ध ने सिखाया है जानते हैं, तो क्या फिर भी वहाँ अज्ञान प्रबल होता है? जब हम जागरूक रहते हैं भंते, तब वहाँ कोई अज्ञान नहीं होता। अब आइए हम ऊपरी होंठ के ऊपर और नाक के ठीक नीचे के स्थान पर, जैसा कि बुद्ध ने सिखाया है, मन एवं पदार्थ की अर्थात नाम एवं रूप की जागरूकता के साथ अपना ध्यान केंद्रित करें। जब हम अपने ध्यान को इस प्रकार स्थिर करते हैं, तो क्या अज्ञान रह सकता है? यदि आप उसे ढूंढें, तो क्या आप उसे पाने में सक्षम होंगे? वह पूरी तरह से गायब हो गया होगा भंते। जब वह चला गया होता है, तो क्या तब भी आप उससे अवगत होते हैं? भंते, वह पूर्ण रूपेण लुप्त हो गया है। यदि ऐसी बात है, तो क्या समझ की शक्ति अधिक है या अज्ञान की? अज्ञान की शक्ति महान है भंते। अरे प्यारे, वह कैसे महान है? वह बेचारा जितनी तेजी से भाग सकता था भाग गया, आप तो उसे अब देख भी नहीं सकते। किंतु भंते, वह बारंबार वापस आता है। ऐसा इसलिए है कि आप उसे वापस आने की अनुमति देते हैं। यदि आप केवल सूझ एवं ज्ञान को ही आने की अनुमति दें, तो अज्ञान वापस नहीं आ सकता। परंतु यदि आप उसे वापस आने की अनुमति देते हैं, तो शनैः शनैः आपकी समझ विघटित हो जाएगी तथा अज्ञान एक बार फिर अभिभूत कर देगा। यह यहाँ विद्युत के प्रकाश की तरह है। प्रकाश प्राप्त करने के लिए आपको किस वस्तु की आवश्यकता होती है? स्विच यानी बिजली जलाने के बटन की भंते। स्विच के भीतर क्या होता है जिससे कि हमें प्रकाश मिलता है? उसके माध्यम से विद्युत प्रवाहित होती है भंते। यदि यह प्रवाह बाधित हो जाए तो क्या होता है? यहाँ अंधेरा हो जाएगा भंते। अंधकार को प्रकाश में परिवर्तित करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? हमें बल्बों यानी बिजली के गोलों या दीपकों में विद्युत भेजनी होती है भंते। और जब प्रकाश हो जाता है, तो अंधेरा कहाँ चला जाता है? वह लुप्त हो जाता है भंते। क्या कुछ अंधेरा पीछे छूट जाता है? नहीं भंते। जब सूझ दीप्तिमान होती है, तो क्या वहाँ कोई अज्ञान बचा रहता है? नहीं भंते। तो क्या अज्ञान की शक्ति महान है? नहीं भंते, वह नहीं है। जो हमने अभी किया, क्या वह करना कठिन है? अधिक कठिन तो नहीं है भंते। जब सहसा प्रकाश हो जाता है, तो क्या हम वास्तविकता को नहीं देख लेते? हम देख लेते हैं भंते। क्या आप अब भी गलत जा पाएंगे? नहीं भंते। यह इतना सरल है। बुद्ध के समझदार शिष्यों ने क्या समझा? यदि आप प्रकाश लाना चाहते हैं, तो आपको स्विच के भीतर तारों को संयुक्त करना होगा जिससे विद्युत का प्रवाह हो। अतः अपना ध्यान सावधानी से कर्म स्थान पर बनाए रखें, वह संयुक्त करेगा। क्या आप समझ रहे हैं? हम इसका परित्याग करना चाहते हैं वंते, बस यहाँ अपना ध्यान केंद्रित कीजिए सावधानी से। यदि आप इस तरह से अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो क्या आप थक जाते हैं? नहीं बनते। क्या इसमें आपका कुछ खर्च होता है? नहीं बनते। क्या आपको अपना काम रोकना पड़ता है? नहीं बनते। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? आप शरीर की सभी चारों अवस्थाओं में बैठे बैठे, खड़े खड़े, चलते चलते और लेटे लेटे इसका अभ्यास कर सकते हैं। क्या आप खाते पीते और काम करते हुए भी आश्वास व प्रश्वास की जागरूकता के साथ कर्मस्थान पर अपना ध्यान बनाए रख सकते हैं? भंते, कृपया हमें सिखाइए कि हम चलते फिरते और काम करते हुए भी कैसे श्वास से अवगत रहें। आप अनेक विभिन्न तकनीकों के विषय में जानते हैं, किंतु आपको उन सब का अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है। किसी एक को चुनें और उस पर काम करें। यदि आप अपने मन को निरंतर एक ही विषय वस्तु पर केंद्रित रखें तो आप जिससे पहले अवगत नहीं थे तत्काल उससे अवगत हो जाएंगे। जिस प्रकार स्विच दबाते ही आप प्रकाश देखते हैं, जब आप इस प्रकार से अवगत होते हैं तो क्या वहां तब भी आपके मन में मिथ्या दृष्टि एवं भ्रम रह सकता है? नहीं बनते। किंतु चूंकि हम नहीं जानते कि प्रकाश के स्विच कहाँ हैं, इसीलिए हमें अंधेरे में बैठे रहना पड़ता है। अरे प्यारे, आपके पास इतने सारे स्विच हैं, आप जिसे भी दबाएं प्रकाश आ जाएगा। बनते, चूंकि यहाँ बहुत सारे स्विच हैं, मुझे यह नहीं पता कि किसको दबाएं। कोई भी एक चलेगा, परिणाम तत्काल आ जाएगा। भंते, जब मैं यह स्विच दबाता हूँ तो प्रकाश का बल्ब तुरंत जल जाता है। इसी कारण मैंने सोचा कि वह गलत स्विच था। वह जल नहीं जाता, वह बल्ब को प्रकाशित करेगा। भले ही किसी दिन यदि वह लघुपथित अर्थात शॉर्ट सर्किटेड हो जाता है, तो तब भी जब आप पुनः प्रयास करेंगे तो वह निश्चित रूप से प्रकाशित करेगा। परंतु भंते, मुझे पता नहीं कि स्विच को कहाँ दबाएं। आप तो स्विचों को जानते हैं। उन भिक्षुओं ने जिनमें आपके प्रति करुणा है, आपको अनेक विधियां सिखाई हैं, तो उन सभी का प्रयोग मत कीजिए, केवल एक का ही चयन कीजिए। भंते, कृपया हमें इस एक विधि को सिखाइए। बुद्ध के द्वारा सिखाई हुई प्रत्येक विधि प्रकाश लाने के लिए एक स्विच के रूप में काम करेगी। भंते, हम एक ऐसी तकनीक सीखना चाहते हैं जिसके द्वारा हम अपना काम करते हुए, चलते फिरते या बैठते हुए अपने आचरण को उत्कृष्ट कर सकें तथा विवेक में स्वयं को प्रशिक्षित कर सकें। अच्छा, तो मुझे बताइए, क्या आप सभी बड़े और छोटे श्वास नहीं लेते? हाँ भंते, हम लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो यह न जानता हो कि श्वास कैसे ली जाती है? क्या आप कभी कभी कह सकते हैं, क्षमा करना, मैं इस समय अत्यंत व्यस्त हूँ, मेरे पास श्वास लेने के लिए भी समय नहीं है? नहीं बनते। तो फिर आपके लिए श्वास लेना अत्यंत सरल है, क्या ऐसा नहीं है? अब जब आप श्वास बाहर छोड़ते हैं तो बस यह पता करने का प्रयास कीजिए कि वायु कहाँ से निकलती है। वह नाक से बाहर निकलती है। बनते, क्या कोई अन्य स्थान है जहाँ से वह बाहर आती है? नहीं बनते, केवल एक ही स्थान है। हाँ, केवल एक ही स्थान होता है, तो आकर मुझसे यह मत कहिए कि इतने सारे सुच हैं और यह कि आपको पता नहीं कि किसे दबाना है। आप सभी लोग श्वास ले रहे हैं, क्या आप नहीं ले रहे हैं? जब आप श्वास बाहर छोड़ते हैं तो वह वायु कहाँ स्पर्श करती है? यह नाक के आधार पर एक बिंदु पर छूती है बंते। जब वायु प्रवेश करती है तो क्या होता है? वह कहाँ स्पर्श करती है? वह वहां पुनः स्पर्श करती है, उसी स्थान पर बंते। तो आपके लिए यह बिल्कुल स्पष्ट है। जैसे ही आप श्वास लेते या छोड़ते हैं तो नाक के आधार पर एक छोटे से स्थान पर वायु संस्पर्श करती रगड़ती है। आप उससे अवगत होते हैं, क्या आप नहीं होते? हाँ बनते। मन को अन्य विषय वस्तुओं पर भटकने मत दीजिए। क्या आप उस स्थान को अनुभव कर सकते हैं जहां वायु का स्पर्श होता है? मानो आपने अपनी उंगली से उसे छुआ हो। अपना ध्यान वहां लाइए और उसे वहीं टिकाए रखिए। नासिका रंध्रों के बाहर श्वास का अनुसरण मत कीजिए। उस स्थान पर धैर्य के साथ शांतिपूर्वक अपना ध्यान बनाए रखिए तथा हवा कैसे अंदर और बाहर जाती है आप यह जानने में सक्षम हो जाएंगे। वायु का प्रवाह निरंतर चलता है ना? हाँ भंते, होता है। बिना किसी रंच मात्र व्यवधान के आप इसे जानते रह सकते हैं। यदि आप अपना ध्यान यहाँ बनाए रखते हैं तो वहाँ मात्र मानसिक गुणवत्ता तथा भौतिक गुणवत्ता अर्थात नाम एवं रूप की ही जागरूकता होती है। अच्छा, तो नासिका रंध्र इन दोनों में से किसके अंतर्गत आते हैं? मन के अंतर्गत अथवा पदार्थ के अंतर्गत? भंते, जहां तक मुझे पता है नासिका रंध्र पदार्थ हैं। वह कौन सा तत्व है जो स्पर्श को जानता है? भंते, जो जानता है वह मन है। तो आप मन एवं पदार्थ को एक साथ जानते हैं। यदि आप मन एवं पदार्थ से अवगत हैं तो क्या वहां अभी भी कुछ और अन्य वास्तविकताएं हैं जिनका आपको पता नहीं? नहीं बनते, मन एवं पदार्थ के अतिरिक्त वहां कुछ भी नहीं है। मन एवं पदार्थ से अवगत रहना अज्ञान है या ज्ञान? बनते, यह ज्ञान है। यदि किसी व्यक्ति में मन व पदार्थ की कोई जागरूकता नहीं है तो हम उसे क्या कहते हैं? उसे हम अज्ञान कहते हैं। बनते, जब हम स्वयं को प्रज्ञा में अर्थात समझ में प्रशिक्षित करते हैं तो क्या अज्ञान हमें तब भी प्रभावित कर सकता है? नहीं बनते, वह नहीं कर सकता। क्या वहां तब भी वर्तमान एवं भविष्य के विषय में चिंता तथा भय का कारण रहता है? नहीं बनते, नहीं रहता। यहाँ तक कि यदि आप मात्र एक क्षण के लिए ही जागरूक होते हैं तो फिर भी आपको लाभ प्राप्त होता है। यदि आप एक लंबी अवधि तक यह जागरूकता बनाए रख सकें तो आपको कितना लाभ प्राप्त होगा? अवश्य ही अनेक लाभ होना चाहिए। बनते, अपनी स्वयं का जागृति प्राप्त करने की क्षमता जिसकी आपने मनोकामना की है उसके विषय में क्या तब भी आपको मन में संदेह रहेगा? नहीं बनते। अपनी स्वयं की जागृति प्राप्त करने की क्षमता जिसकी आपने मनोकामना की है उसके विषय में क्या तब भी आपके मन में संदेह रहेगा? नहीं बनते। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपने जो सोचा है आप उससे भी पहले पहुंच सकते हैं। तब भी आपको अपने शिक्षकों, अभिभावकों तथा बच्चों के प्रति अपने कर्तव्यों का अवश्य ही पालन करना होता है। आपको बुद्ध की शिक्षा में सहयोग देना होता है। आपको जीविकोपार्जन करना होता है। यदि आप इन सभी कर्तव्यों का पालन नहीं करते तो क्या आपका शील उत्कृष्ट रहता है? नहीं रहता बनते। यदि आपका नैतिक आचरण समुचित नहीं है तो क्या आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं? नहीं बनते, यह असंभव है। मुझे बताइए कि कब या कहाँ समुचित आचरण और ध्यान का अभ्यास एक साथ करना असंभव है। यह कभी भी अधिक कठिन नहीं है बनते, यहाँ तक कि उसके लिए भी नहीं जो रोगग्रस्त हो। यदि आपकी साधना के माध्यम से आपकी अंतर्दृष्टि विकसित होती है तो क्या फिर भी आपको अन्य लोगों को बताने की आवश्यकता है कि आप बुद्ध धर्म के माध्यम से आनंदित हुए हैं? दूसरों को बताना आवश्यक नहीं है बनते। तथा यदि आप इसके बारे में बात नहीं करते तो क्या इसका अर्थ यह होता है कि आपको अपनी स्वयं की खुशी के विषय में पता नहीं है? हम भले ही सबको न बताएं, फिर भी हम स्वयं इसे जानते हैं बनते। ठीक इसी तरह आर्य लोग अर्थात उत्कृष्ट लोग यह जानते हैं। आपको स्वयं पता है कि आपको कितना उपलब्ध हो गया है और जब आप लक्ष्य तक पहुंचेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यदि आप कागज के एक टुकड़े पर लिखते हैं कि नमक नमकीन होता है और कोई व्यक्ति इसे पढ़ता है तो वह जान जाता है कि नमक नमकीन होता है। क्या वह नहीं जानता? अवश्य ही बनते। और यदि आप किसी से केवल यह कह दें कि नमक नमकीन होता है तो क्या उसे पता चल जाएगा? क्यों, निश्चित रूप से बनते। परंतु मुझे यह बताइए कि क्या केवल आपके ऐसा लिखने या कहने से ही नमक नमकीन होगा? नहीं बनते, बिल्कुल नहीं। यदि आप पढ़ते हैं कि नमक नमकीन होता है तो क्या आपको वास्तव में इसका पता चलता है? यद्यपि व्यक्ति समझता है कि यह नमकीन है, वह यह नहीं जानता कि वास्तव में नमक का स्वाद कैसा होता है। जब हम अपनी जिह्वा पर कुछ नमक रखें और उसे चखें, केवल तभी हम वास्तव में नमकीन का क्या अर्थ होता है यह जान पाएंगे। यदि आपने इसे चखा है और आपको पता है कि यह नमकीन है तो क्या आपको फिर भी इसके विषय में पढ़ने की आवश्यकता है? क्या तब भी आपको इसके स्वाद के विषय में घोषणाएं करने की आवश्यकता है? नहीं बनते। यदि हम अपने पड़ोसी को इसके स्वाद के विषय में बताएं तो क्या वह जान जाएगा? बनते, वह बस इसके बारे में सुनेगा। वह जान भी जाए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें उसे कुछ नमक देना होगा तथा उसे चखाना होगा। अन्यथा जो कुछ भी वह जानता है वह केवल सुनी सुनाई बात होगी। बनते, क्या आप निश्चित रूप से जानते हैं कि समुचित आचरण तथा अंतर्दृष्टि व ज्ञान दुख से मुक्ति का मार्ग गठित करते हैं? हाँ बनते, हम जानते हैं। यदि आप पढ़ लेते हैं कि नमक नमकीन होता है तथा इस ज्ञान को बिल्कुल पर्याप्त समझने लगते हैं तब आप वहीं रुक जाते हैं। किंतु यदि आप इसे सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आपको स्वयं इसे चखना होगा। नमक नमकीन होता है ऐसा पढ़ना और तत्पश्चात मेरे द्वारा उसकी पुष्टि करवाना, क्या यह पर्याप्त है? बनते, आप झूठ नहीं बोलेंगे। यदि आप कहते हैं कि यह नमकीन है तो मेरे लिए यह बिल्कुल पर्याप्त है। आपने जो पहले कहा था अब आप उससे वापस जा रहे हैं। पढ़कर तथा सुनकर आप जानते हैं कि नमक नमकीन होता है, किंतु केवल वास्तव में स्वयं द्वारा जानने से ही आप आनंदमय होंगे। यदि आप किसी को बस बता देते हैं कि नमक नमकीन होता है तथा आप जो कहते हैं वह उसे आंख बंद कर स्वीकार कर लेता है, तो उसमें स्वयं उसका स्वाद चखने की इच्छा भी नहीं महसूस होगी। आखिरकार उसे लगेगा कि वह जानता है। मन में इस धारणा के कारण वह उसके स्वाद को चखने की भी आवश्यकता नहीं समझेगा। स्वयं द्वारा यह जानना कि नमक नमकीन होता है सरल नहीं है। नमक विद्यमान है, इसे लीजिए, इसका स्वाद चखिए, तब आप स्वयं जान जाएंगे और दूसरों से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। भंते, कल मैंने थोड़ा सा नमक चखा था। सचमुच में? केवल थोड़ा सा क्यों? क्या नमक कम पड़ गया था? नहीं भंते, वह तो प्रचुर मात्रा में था। तो ग्रहण कीजिए, बस थोड़ा सा मत चखिए। आपको जितनी आवश्यकता हो उतना उपयोग कीजिए। आप में से प्रत्येक व्यक्ति के पास कुछ नमक है, नहीं है क्या?
हाँ भंते, हमने अभी तक अपना पूरा नहीं खाया है भंते, किंतु हम केवल थोड़ा सा ही चखकर संतुष्ट हैं।
यह तो जाहिर है, लेकिन क्या आप वहीं पर रुक जाने के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं कि हैं?
भंते, ऐसा है कि वास्तव में तो नहीं, किंतु समय के साथ सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। हमने विगत वर्ष में कुछ योजना बनाई थी और एक वर्ष बीत भी गया। अब इस बार केवल सोचिए नहीं, बुद्ध के समय केवल सोचने वाले कितने थे? किसी बालू तट पर रेत के कणों की तरह बहुसंख्यक थे बनते।
फिर भी आपको प्रयास करना है और ध्यान लगाना है। आपको फिर भी बुद्ध की शिक्षा को समझने के लिए प्रयास करना है। आप ऐसा करने की सोच रहे हैं ना?
क्या आप केवल इस जीवन में ही प्रयास करने के बारे में सोचेंगे?
यदि हम इसके बारे में केवल सोचते रहें बनते, तो हम फिर से जन्म और मृत्यु के चक्र में पीछे छूट जाएंगे।
तब तो कोई समस्या नहीं है। अतीत में हमने सुअवसर खो दिए क्योंकि हम प्रयास करने के बारे में केवल सोच रहे थे, किंतु अब हम जानते हैं कि लकड़ी के दोनों टुकड़ों में अग्नि है। हम उन्हें आपस में रगड़ेंगे। इस प्रकार सोचने से प्रयास होगा और युद्ध में लड़ने की इच्छा भी।
क्या आपने लकड़ी के दोनों टुकड़ों को पकड़ लिया है? यदि मैं अपना प्रवचन जारी रखूं, तो आपको लगेगा कि ये भिक्षु बड़ी देर से बोल रहे हैं, तो मैं अब समाप्त करूंगा। यदि आप काम करते हैं, केवल तभी आप इसे समाप्त कर सकते हैं। यदि आपकी काम करने की इच्छा है, तो ध्यान लगाइए, कठिन परिश्रम कीजिए, अपने को उसी प्रयास एवं दृढ़ संकल्प के साथ लगाइए, जैसे कि प्राचीन काल के उत्कृष्ट आर्य लोगों ने लगाया था।